नमस्कार भारत, 6 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर का ऐलान, राष्ट्रपति पर तय होंगे महाभियोग के आरोप, ट्रंप समर्थकों ने उठाए मंशा पर सवाल।
Why are we going through this nightmare? It goes back to the very first day after the
रिजर्व बैंक का अनुमान 6.1 नहीं 5% रहेगी जीडीपी ग्रोथ रेट, क्या पटरी पर लौट सकती है आर्थिक विकास की गाड़ी?
पहले सरकार को बताना चाहिए ईमानदारी से कि जो इकोनॉमी में इश्यू है वो सीरियस है और उसको वक्त लगेगा।
और बुलेट ट्रेन परियोजना पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की दो टूक।
केंद्र सरकार को बुलेट ट्रेन करनी है तो अपने पैसे से करे, हमारे माथे क्यों मार रहे हैं? तो मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र के सामने और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं।
सुनाएंगे बीबीसी से खास बातचीत, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स द्वारा महाभियोग की घोषणा के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा है कि सीनेट में उनकी ही जीत होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो उनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहते हैं तो ये जल्द से जल्द करना चाहिए। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर ताकत का दुरुपयोग किया है। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ देश भर में जारी हड़ताल में कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं और पेरिस में अब तक 87 लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। इस हड़ताल से स्कूल कार्यालय के कामकाज काफी प्रभावित हुए हैं, परिवहन सेवा लगभग ठप है। फ्रांस में कर्मचारी पेंशन योजना में प्रस्तावित सुधारों से नाराज हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में एक यूनिवर्सल पॉइंट बेस्ड पेंशन प्रणाली शुरू करने की योजना जताई है। नए प्रस्तावों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की योजना है, तय समय से पहले रिटायर होने वालों को कम भुगतान मिलेगा। पेरिस में कंसल्टेंसी फर्म ओपन सिटीज के साथ एक विश्लेषक फैम के क्रुम्बुलर ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति सालों से फ्रांस की उदार पेंशन प्रणाली में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
It will depend to what extent they will be able to agree with the social partners, trade unions and employers.
ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वे सामाजिक साझेदारों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं को किस हद तक सहमत कर पाएंगे। इन सभी के साथ वे अभी तक बातचीत कर रहे हैं और क्या वे हड़ताल को शांत कराने में सफल होंगे या नहीं। हड़ताल का हर एक दिन का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और इसी ने पिछले राष्ट्रपतियों को आगे बढ़ने से रोका था। ये थे फैम के क्रुम्बुलर के शब्द। ईरान में अमरीकी दूत का कहना है कि वहां अधिकारियों द्वारा पिछले महीने विरोध प्रदर्शन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रायन हुक ने माना कि आंकड़ों के बारे में निश्चित होना असंभव है क्योंकि ईरान की सरकार जानकारी को बाहर नहीं आने दे रही है। उन्होंने एक घटना का हवाला दिया जिसमें अमरीकी अधिकारियों का मानना है कि महशर शहर में कम से कम 100 प्रदर्शनकारियों की गोली मार के हत्या की गई।
Without warning, the IRGC opened fire on the protesters, killing several people.
बिना किसी चेतावनी दिए ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी जिसमें कई लोग मारे गए। कई प्रदर्शनकारी बचने के लिए आसपास के दलदल वाले इलाके में भागने लगे। IRGC ने उन्हें भी पकड़ा और मशीन गन के साथ घेर लिया और फिर प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया। मशीन गन फायरिंग के दौरान पीड़ितों की चीख साफ सुनी जा सकती थी। अकेले इस घटना में सरकार ने 100 से अधिक ईरानी नागरिकों की हत्या की है। ये थे ब्रायन हुक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब की सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी अरामको ने बृहस्पतिवार को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि IPO पेश किया। कंपनी ने अपने मूल दायरा के ऊपरी स्तर पर $25.6 अरब जुटाए हैं। इस हिसाब से यह अब तक की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। इससे पहले चीन की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा ने 2014 में $25 अरब जुटाए थे। उस समय अलीबाबा वॉल स्ट्रीट में उतरी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग खसरे से संक्रमित हैं, बावजूद इसके कि ये बीमारी पूरी तरह से रोकी जा सकती है। WHO ने कहा है कि ये बेहद चिंताजनक है कि आज भी किसी बच्चे की इस बीमारी से अगर मौत होती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। एक आजाद लोकतांत्रिक देश जहां सरकारें हर नागरिक की हिफाजत का दावा करती हैं, उन्हें हक और इंसाफ दिलाने की बात होती है, लेकिन वही जमीन पर एक अलग सच दिखता है। न्याय पाने की आस लगाए पीड़ितों को आग के ऐसे जानलेवा दरिया में झोंक दिया जाता है कि संवेदनशील लोगों की आंखों में समंदर उमड़ पड़ता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से लेकर छत्तीसगढ़ के सारकेगुड़ा तक ऐसे ही मामलों पर आज हम बात करेंगे नमस्कार भारत में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप तय होंगे। ट्रंप ने इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सीनेट के ट्रायल में जीत उनकी ही होगी। पूरी रिपोर्ट सुनिए सृष्टि श्रीवास्तव से।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाले संसद के निचले सदन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की तैयारी कर ली है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप आक्रामक हैं। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जाए जिससे देश वापस कामकाज पर लौट सके। इससे पहले निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन की जांच कराने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई जाएगी।
Our democracy is what is at stake. The president leaves us no choice.
हमारा लोकतंत्र दांव पर है। राष्ट्रपति ने हमारे सामने इसके सिवा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है कि हम कार्रवाई करें। उन्होंने एक बार फिर चुनाव में अपने फायदे के लिए भ्रष्ट आचरण आजमाने की कोशिश की है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया है। उन्होंने हमारे चुनाव की निष्पक्षता को जोखिम में डाला है। ये थे स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शब्द। वहीं ट्रंप समर्थक इसे लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। निचले सदन में रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने कहा कि ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं डेमोक्रेटिक पार्टी तभी से उन पर महाभियोग चलाना चाहती है।
It goes back to the very first day.
हम इस बुरे सपने को क्यों झेल रहे हैं? इसकी शुरुआत चुनाव के पहले दिन से होती है। उनका एक लक्ष्य रहा है, उन्होंने एक टाइमलाइन तैयार की है और उसी पर टिके हुए हैं। वो हमेशा से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते थे। आप उनके शब्दों को देखिए, उनके उठाए गए कदमों को देखिए, देखिए कि उन्होंने क्या किया है। ये थे केविन मैकार्थी के शब्द। उधर ट्रंप ने भरोसा जताया है कि सीनेट में उनकी ही जीत होगी। इस मामले पे नजर रख रहे बीबीसी संवाददाता के मुताबिक ऐसी संभावना बेहद कम है कि सीनेट राष्ट्रपति ट्रंप को हटाने के लिए वोट करे। सीनेट पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है।
रिपोर्ट सुना रही थी सृष्टि श्रीवास्तव। रुख भारत का और बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की, जहां इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाली एक रेप पीड़ित को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित को कल इलाज के लिए लखनऊ से दिल्ली लाया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं समीर आत्मज मिश्र। जी समीर, जब से खबर आई है आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पीड़ित की स्थिति को लेकर आपके पास क्या जानकारी है।
जी वासल्य, पीड़ित की हालत तो यहीं से काफी खराब थी और इसीलिए उसको पहले उन्नाव से तुरंत ही लखनऊ भेजा गया और लखनऊ में कुछ ही घंटों के बाद उसको कहा गया कि बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग भेजा जाए क्योंकि यहाँ उस तरीके से इलाज संभव नहीं है। और यहाँ जो डॉक्टरों का कहना था कि 90% हिस्सा उसके शरीर का जल गया है
जी।
तो जाहिर सी बात है कि कितनी क्रिटिकल स्थिति, कितनी गंभीर स्थिति उस लड़की की है
जी।
दूसरे यहाँ पे जैसा आपने बताया कि उसको आग के हवाले कर दिया गया था, तो ताजा जानकारी ये है कि जो उसमें चार अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
जी समीर, हम चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा जो घटनाक्रम है, अचानक ये खबर सामने आई, लेकिन इसके पीछे की एक पूरी कहानी है। ये पूरा मामला क्या है, संक्षेप में जरा हमारे श्रोताओं को बताएं।
जी, ये पूरा मामला एक साल पहले का है और जैसा कि लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ गैंगरेप किया गया था, उसके मामले में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। लेकिन जो पुलिस का कहना है और इसको लड़की के परिवार वालों का भी कहना है कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उनसे इनकी पहले से जान पहचान थी और शायद ये लोग शादी करने वाले थे या शादी कर चुके थे, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। लेकिन जब ये बातें नहीं बन पाई तो उसके बाद फिर चूंकि ये साथ रहे थे उस तो लड़की ने रेप का केस दर्ज कराया, गिरफ्तारी भी हुई थी। और जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही, वो 5-7 दिन पहले वो जमानत पर छूट करके आया है। और जो जिन लोगों पे, 5 लोगों पे लड़की ने बताया कि उन्होंने उसको कल सुबह जलाने की कोशिश की, उनमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो जिसके ऊपर रेप का आरोप है।
जी तो मैं यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस सब कार्रवाई की जानकारी दे रही है, लेकिन कई सारे सवाल पुलिस की कार्रवाई जो अब तक हुई है कल की घटना के पहले, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं।
निश्चित तौर पर सवाल ये भी उठ रहा है कि लड़की का अब काफी दिनों तक संघर्ष करती रही, तब जा करके उसकी रिपोर्ट लिखी गई, यहाँ तक कि
और कल भी वो कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रही थी।
कल भी, हाँ जी हाँ, कल वो कोर्ट में सुनवाई के लिए ही जा रही थी, उसको ट्रेन पकड़ना था, चूंकि रेप का केस जो है वो रायबरेली जिले में दर्ज है, वहाँ उसको जाना था और वहाँ जाकर के उसकी सुनवाई की तारीख थी, लेकिन वहाँ स्टेशन जाने से पहले ही ये सारा पूरा घटनाक्रम हुआ।
जी समीर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के अखबारों पर। स्टूडियो में है सृष्टि श्रीवास्तव। सृष्टि, श्रोताओं को बताइए कि इस खबर पर आज के अखबार क्या कह रहे हैं।
जी वात्सल्य, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ये घटना हुई है कि एक रेप पीड़िता को जिंदा जलाया गया है, और इस घटना के बाद एक बार फिर उन्नाव चर्चा में है। कई अखबारों ने इस घटना को अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। अगर हम बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस तरह से जिसमें विक्टिम को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, इसको पहली अपने पेज पर घटना दी है। साथ ही में एक एडिटोरियल छापा है जिसमें एक आईपीएस अधिकारी है जो अपने आप को एक पुलिस के तौर पे और एक पिता के तौर पे वो कैसा महसूस करते हैं इन घटनाओं के बारे में वो बता रहे हैं। अगर हम बात करें अमर उजाला की, तो उन्होंने एक पीड़िता की तस्वीर छापी है जिस समय उनको लखनऊ से एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जा रहा था, और जहाँ हैदराबाद की अभी हाल ही में घटना हुई थी उसके बाद सरकारों की जिम्मेदारी तय करने की बात हो रही थी, वहीं अमर उजाला ने एक हेडिंग ये भी दी है कि बेशर्म राजनीति, और प्रदेश के जो खाद एवं रसद राजमंत्री हैं रणवेंद्र प्रताप सिंह, उनके एक संवेदनहीन बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपराध रोकने की गारंटी तो भगवान राम भी नहीं दे पाए।
ये बयान है जिसका जिक्र किया गया है अखबार में।
और साथ ही में कई अखबारों ने हेडिंग ये भी दी है, जैसे अमर उजाला की हम बात करें, नाकारा और संवेदनहीन सिस्टम, किस तरह से एक बेटी को मौत के मुंह में ढकेला गया। दैनिक भास्कर की अगर हम खबर देखें तो उसने हेडिंग दी है कि किस तरह से जलता शरीर लेकर 1 किलोमीटर तक भागी दुष्कर्म पीड़िता, 90% तक झुलस गई। और जनसत्ता ने इसी बारे में पीड़िता का बयान छापा है कि उसने वो तब भी होश में थी इतनी चोटों के बाद भी, और उन्होंने किस तरह से बयान दिया और बताया कि वो रायबरेली इसको इसी केस को लड़ने के लिए जा रही थी जब उनके
अखबारों ने उनकी हिम्मत के बारे में भी जानकारी दी है, हिम्मत के बारे में किस तरह से वो खुद सामने आई और उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट की। संसद में भी ये मामला उठा है, इसका भी जिक्र कुछ अखबारों में मैं देख रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया सृष्टि श्रीवास्तव अखबारों की जानकारी देने के लिए। इंसाफ का इंतजार छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में भी है। यहां साल 2012 में हुए एक एनकाउंटर में 17 लोगों की मौत हो गई थी, मरने वालों में नाबालिग भी थे। एनकाउंटर पर सवाल उठे तो जस्टिस वीके अग्रवाल की कमेटी बनी। इस कमेटी ने बीते महीने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरने वाले सभी लोग स्थानीय आदिवासी थे और उनके नक्सली होने का कोई सबूत नहीं है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी सारकेगुड़ा पहुंचे और उन्होंने बात की एक चश्मदीद से और साथ ही आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली सोनी सोरी से। सुनिए
2012 की वो घटना आज तक लोगों के दिल और दिमाग पर हावी है और उसको सोच सोच कर लोग सिहर उठते हैं। जून में 28 तारीख की रात को अचानक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक दस्ता, उसे खबर मिली कि माओवादी कहीं जमा है, सिलगर की जगह है काफी दूर वहां पर, तो ये पूरा दस्ता निकला। लेकिन रस्ते में बीच में गांव के लोग, जो सारकेगुड़ा के गांव के लोग हैं, वो बैठकर बीच पंडुम की तैयारी कर रहे थे और बीच पंडुम की तैयारी के दौरान वहां तो अंधेरा था, अंधाधुंध गोलियां चली, कई लोग मरे। बाद में जांच आयोग ने पाया कि ये एनकाउंटर ही फर्जी था। कमला काका जो है बहुत मुखर थी उस जमाने में, मैं आपसे मिला था उस वक्त आकर, और आप बहुत उत्तेजित थी क्योंकि उस वक्त बिल्कुल ताज़ा थी घटना, लोगों को गिरफ्तार करके भी ले गए थे, लाशें ले गए थे वहाँ पे, गांव के पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। आज इतने दिन के बाद ये आयोग की रिपोर्ट आई, आपको क्या लगता है?
मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तो रिपोर्ट ही आई है सर, तो अभी तो सरकार को कार्रवाई करने का बच्चा है, इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ, गांव वालों से बात करूँगी और गांव वालों का भी क्या फैसला है, उन लोग क्या चाहते हैं इसके इस रिपोर्ट के मामले में, तो उसके बाद ही मैं सब कुछ बता सकती हूँ।
तो ये जो रिपोर्ट आई है, इससे आपको लगता है कि ये इंसाफ में क्या बहुत देर हो गई, कितने साल हो गए?
हाँ, ये तो लग रहा है कि मतलब बहुत देर से आया है इंसाफ, फिर भी इस बात का खुशी है कि सही जांच आया है।
लेकिन ये भी कहा गया था कि पुलिस वालों को भी गोली लगी, जो आए थे फोर्स के जवान, उनको कैसे गोली लगी?
हाँ, वो तो चारों तरफ से घेर के जब फायरिंग की है तो उनको तो लगनी ही है ना, एक दूसरों की गोली लगी।
सोनी सोडी जी, आप तो आदिवासी मामलों को लेकर काफी संघर्ष करती रही हैं, ये जो मामला हुआ इसमें ये अब रिपोर्ट भी आ गई सामने, अब इसका आगे क्या?
देखिए, उसे ये जब घटना हुआ है उस समय तो मैं जेल में थी, हम जेल में रह के जब पढ़े कि पेपर में इतना बड़ा घटना हुआ है जो बहुत ही हमको तकलीफ पहुंचा है, लेकिन आज रिपोर्ट आ गया है, इस बात की खुशी है। खुशी होते हुए भी हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट आना को बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इनके ऊपर जैसा रिपोर्ट के आधार पर उन पर FIR हो और उनको दोषियों को बिल्कुल जेल तक उनको पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, तो अब मुझे लगता है कि एक लड़ाई बची है, ये लड़ाई लड़नी होगी।
ये थी सलमान रावी की रिपोर्ट। आज 6 दिसंबर है, साल 1992 में आज के दिन ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तब से हर साल इस दिन को हिंदू संगठन शौर्य दिवस और मुस्लिम संगठन काला दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ समीर आत्मज मिश्र जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या आज के लिए अयोध्या में कोई कार्यक्रम तय किया गया है। जी समीर, क्या जानकारी है आपके पास?
जी वासिल, ये 27 साल में पहली बार शायद होगा कि वहाँ पे इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं अभी तक तय किया गया है। मुख्य रूप से जो आपने शौर्य दिवस की चर्चा की, वो विश्व हिंदू परिषद मनाती थी या उसके साथ में और कुछ संगठन मनाते थे, तो विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पे कहा है कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है और किसी तरीके का सौहार्द यहाँ पे बिगड़े उस की वजह से अब उसको नहीं मनाएंगे।
जी, जरूरत नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इस बार फैसला आया है,
जो फैसला आया है उसके मद्देनजर, अब चूंकि उनके पक्ष में फैसला है मंदिर बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उनका कहना है कि हम उसकी वजह से ही मनाते थे लेकिन इस बार नहीं मनाएंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय यूनिट है,
जी
सेंट्रल यूनिट, उसने कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं, हमारा पैन इंडिया पूरे भारत में हम इसको हमेशा मनाते रहे हैं 27 साल से, इस बार भी मनाएंगे। अयोध्या में अगर मेरी बात हुई वहाँ उनके प्रवक्ता से, तो उनका कहना था कि अयोध्या के लोग, चूंकि वहाँ धारा 144 पिछले महीने से ही लागू है और इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक है, तो वहाँ के लोग अपने ढंग से फैसला ले सकते हैं, लेकिन देश भर में शौर्य दिवस उसी तरीके से मनाया जाएगा जैसे कि मनाते रहे हैं।
जी।
दूसरी ओर मुस्लिम संगठनों ने भी, जो काला दिवस मनाया जाता था, योम गम मनाया जाता था,
जी,
उन्होंने भी कहा है कि हम इसको नहीं मनाएंगे, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये मामला खत्म कर दिया है, तो अब इन चीजों को बार बार उठाने की या उसको
कोई मतलब नहीं है। बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र इस अपडेट के लिए। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं, इससे शिक्षण और सेमेस्टर परीक्षा दोनों में व्यवधान आ रहा है। हड़ताल की वजह क्या है, ये जानने के लिए BBC संवाददाता सिंधु वासनी ने बात की आंदोलन में शामिल शशि शेखर सिंह से।
यह जो घेराव जारी है वो इसलिए कि 28 अगस्त 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक लेटर भिजवाया दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज और विभागों को, कि इस लेटर के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में जो भी सैंक्शन पोस्ट होंगे उस पर तदर्थ व्याख्याता अर्थात एडहॉक टीचर की नियुक्ति नहीं होगी, उसके जगह पे अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति होगी। इसका असर ये हुआ कि अचानक दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेज और विभागों में लगभग 4,500 से अधिक काफी दिनों से बरसों से पढ़ा रहे प्राध्यापक जो तदर्थ प्राध्यापक हैं, एडहॉक टीचर्स हैं, उनकी नौकरी को खतरा पैदा हो गया है।
सर, जो इन्होंने एडहॉक को गेस्ट टीचर बनाने और जो सारे बदलाव किए हैं, इन बदलावों के पीछे इनका क्या तर्क है, क्यों कर रहे हैं?
देखिए, इसमें ऐसा है कि एक बात जान लीजिए, धीरे धीरे सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में पैसा देने से कतरा रही है, तो जो एडहॉक नियुक्तियां उनको तो फुल टाइम पे मिलता है ना। एडहॉक नियुक्ति आप करेंगे तो अधिकतम उन्हें लेक्चर के हिसाब से 1500 रुपए लेक्चर के हिसाब ही जस्ट बढ़ा है। पहले तो 1000 रुपए मिलते थे और अधिकतम 25,000 रुपए पहले मिलते थे, अब उन्होंने 50,000 किया है। तो अब सोच लीजिए कि एक शिक्षक जो पढ़ाता है एडहॉक के रूप में, जिससे लगभग 92,000-93,000 मिलते हैं पूरे फुल पे, उसके जगह पर वो 50,000 अधिकतम में काम चला लेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षक जो है सिर्फ
ये थे शिक्षकों के आंदोलन में शामिल शशि शेखर सिंह। और अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि साल 2019-20 में जीडीपी विकास की दर 5% रहेगी। पहले 6.1% की वृद्धि दर का अनुमान था। आखिर विकास की गाड़ी की रफ्तार सुस्त क्यों हो रही है? बीबीसी संवाददाता सिंधु वासनी ने यह सवाल आर्थिक मामलों के पत्रकार शंकर अय्यर के सामने रखा।
इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे बोलते हैं जो ढांचा है जिस तरह का हमारा इकोनॉमी है, उसमें कई सारी दिक्कतें आई हैं। और जो पहले 2004 से 9 तक जो ग्रोथ हुआ वो ग्लोबल ग्रोथ था, तब हम लोग उसके साथ चल पड़े। फिर उसके बाद में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं जिसमें हम लोगों ने जो स्टेप्स लेना था वो स्टेप नहीं लिए और जो नहीं किया है वो हमारे सामने है। सुख जब ये अच्छे दिन थे तभी हमने जो स्टेप्स लेने थे वो नहीं लिए।
वो कौन से स्टेप्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो स्टेप्स नहीं लिए गए?
2014-15 में जब कच्चे तेल का भाव गिरा था और जब बैंक के एनपीएस के लेवल हाई थे, तब सरकार को एक कदम लेना चाहिए था कि जो बैंक्स के कनेक्टेड इश्यूज हैं उसके रिकैपिटलाइजेशन करना, उसका बैड लोन बैंक बनाना, ये सब करना चाहिए था। उसमें कई सारे पेचीदे इश्यूज हैं, लेकिन अगर तब कर लेते तो जो दिक्कतें हमारे सामने आज वो नहीं, एटलीस्ट कम होते।
अभी फिलहाल जब लगातार जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रही है और आगे भी गिरने के ही अनुमान है, तो अभी फौरी तौर पे मतलब तुरंत ऐसे क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे स्थिति थोड़ा काबू में आए?
पहले सरकार को बताना चाहिए ईमानदारी से कि जो इकोनॉमी में इश्यू है वो सीरियस है और उसको वक्त लगेगा। दूसरा, जो आंकड़े हैं हम निकालते हैं, जो छुपाते हैं दिखाते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी, आप अगर आपके मेरे और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर सरकार उसको ठीक ठाक से सॉल्व करने लगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा।
ये थे पत्रकार शंकर अय्यर। और अब एक खास बातचीत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में 3 दलों की सरकार बन गई है, लेकिन अभी सरकार की पूरी सूरत तय नहीं हो पाई है। मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या तीनों दलों के बीच भरोसे में कोई कमी है? ऐसे ही सवालों के साथ बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने बात की राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चव्हाण से।
देखिए, पहली बार महाराष्ट्र में 3 प्रमुख दलों की सरकार बन रही है। तीनों पार्टियां सत्ता में रह चुकी है। शिवसेना अब की बार भी सत्ता में थी और 1995 में भी सत्ता में थी, तो ये तीनों भी एक प्रमुख पक्ष महाराष्ट्र के है। तीनों पार्टियां जो है वो साथ में आई हैं। पहली बार 3 पार्टीज की एक कोएलिशन बनी है। दिक्कतें तो थोड़ी आएंगी कि किस तरह से 3 हिस्सों में बंटवारा होगा, जो विभाग है, जो हमारे मंत्री बनेंगे, और उसमें किसके कितने मंत्री बनेंगे, उसका फैसला तो हो चुका है। अब कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा महकमा किसके पास रहेगा, उसकी चर्चा चल रही है। और फिर एक बार वो तय हो जाने के बाद उस महकमे में कौन मंत्री बनेगा वो अपनी अपनी पार्टी को फैसला करना है। एनसीपी में भी कुछ अंदरूनी बातें हैं कि जो कि अजीत पवार जी ने कुछ एक बगावत सी की थी, तो वो बात अब ख़त्म हो गई है, तो उनका क्या कहना है वो भी एनसीपी
सर। तो अब उसी पे आती हूँ, आपने नाम भी ले लिया अजीत पवार जी का, क्या नाराज हैं? डिप्टी सीएम चाहिए उनको? और क्या कांग्रेस के अंदर भी कोई इस तरह की बात है? आप मंत्रिमंडल में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सबसे सीनियर मोस्ट में से आप भी हैं।
देखिए, एनसीपी में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। वो अपना जो इशू है वो अपने आप खुद सुलझ लेंगे। अजीत पवार एक काफ़ी सीनियर नेता महाराष्ट्र के, मेरे साथ वो उप मुख्यमंत्री थे, तो मैं समझता हूँ कि पवार साहब वो जरूर कुछ उसमें हल निकालेंगे। जो जो घटना घटी थी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन
लेकिन लड़ाई क्या उसी पे थी, डिप्टी सीएम पे ही है।
अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ना तो मेरा कहना उचित रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इशू होगा, जो भी मसला होगा वो हल कर लेंगे, और राज्य के हित में मैं समझता हूँ ये कोई बात अड़ी नहीं आ सकती। जहाँ तक मेरा फैसला है वो पार्टी हमारा तय करेगी क्या करूँगा मैं, और अगर मेरा उपयोग कहाँ होगा पार्टी तय करेगी।
सर लेकिन एक स्वेच्छा भी तो होती है, क्या आप उद्धव ठाकरे के अंडर काम करना चाहेंगे? क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि उनके पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, आपके पास तो वो अनुभव है, तो आप सरकार में रहकर उस अनुभव को देंगे, सरकार के बाहर से रहकर अनुभव देंगे, ये तो चर्चा का विषय जरूर।
अब ये दोनों भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा था कि हमारे यहाँ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात है, तीनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, दो दो या तीन तीन सदस्य होंगे तो दस एक लोगों की कमेटी बनेगी, कैबिनेट के अंदर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। तो ये जहाँ तक सरकार चलाने का अनुभव की बात है, आपने जो कहा सही है, उद्धव जी को उन्होंने कभी सरकार में उन्होंने नहीं रहे हैं, उनके कुछ साथी हैं जो सरकार में रहे थे, लेकिन एक ये भी बात है कि जो अनुभवी लोग अगर आए तो कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पार्टी का निर्णय है कि हम अंदर जाएंगे बाहर रहेंगे, लेकिन जहाँ भी रहेंगे हम तो विधानसभा में तो है ही, तो जितना जहाँ तक मुख्यमंत्री कोई सलाह अगर मांगते हैं तो वो तो देने के लिए हम तो रहेंगे।
गठबंधन होने के पहले जो कुछ हुआ, जिस तरह से रातों रात शपथ दिलाई गई, जिस तरह से अजीत पवार शपथ पत्र लेकर चले गए थे कि हाँ मेरे पास इतना समर्थन है, क्या वापस आप भरोसा कर पाएंगे अजीत पवार पर?
देखिए सवाल ये कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक अध्याय था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि एनसीपी का अंदरूनी मामला है, और एक तो अजीत पवार का रिश्ता आप जानते हैं पवार साहब के साथ क्या है, पवार साहब अगर उन पर रिश्ता विश्वास कर सकते हैं तो मेरे ख्याल हम सबको कर लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री बनते ही सुनना ऐसी बातचीत है, कितना सही है वो तो आप बताएंगे, बुलेट ट्रेन परियोजना रुक रही है क्या? मोदी की फ्लैगशिप है, सब बोलते हैं 2024 के पहले तक आ भी जाएगी, चला के दिखा देंगे, तो क्या अब नई सरकार में ये रुक जाएगी?
देखिए मैं दो चीज़ें हैं इसमें, अब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या फैसला लेती है वो उन पर निर्भर करता है, लेकिन जहाँ तक मेरी निजी राय है ये बहुत गलत फैसला था, 1,25,00,000 करोड़ का जो खर्चा है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, और मैं तो अपनी तरफ से विरोध पहले से ही कर रहा था, मैंने वक्तव्य भी दिया था कि अगर हमारी सरकार आई यानी कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम उसको रोक देंगे, ये मैंने कहा भी था, लेकिन मेरे इस विचार से पूरी तरह से विचार करना चाहिए। क्या मुंबई के लोगों ने मांग की थी कि हमको बुलेट ट्रेन चाहिए? किसको चाहिए? अगर केंद्र सरकार को बुलेट ट्रेन करनी है तो अपने पैसे से करे, हमारे माथे क्यों मार रहे हैं? और ये कर्जा जो है बहुत बड़ा कर्जा है, उसका जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन जो होता है उसे बहुत पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं सब मानता हूँ कि महाराष्ट्र के सामने और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विशेषकर किसान के सामने जो सिंचाई की समस्या है वो इतनी बड़ी भारी समस्या है, उसमें बुलेट ट्रेन हो या मुंबई पुणे का हाइपर लूप का प्रोजेक्ट हो वो बिल्कुल इस वक्त नहीं होना चाहिए।
ये थे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान और उनसे बात कर रही थी सरोज सिंह। और आपको बता दें कि आज हैदराबाद में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 2020 मैच खेला जाएगा, मैच शुरू होगा शाम 7 बजे। और अब चलते चलते मुख्य समाचार सृष्टि श्रीवास्तव से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स द्वारा महाभियोग की घोषणा के बाद अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने कहा है कि सीनेट में उनकी ही जीत होगी। फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ देश भर में जारी हड़ताल में कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। नाइजीरिया की पुलिस ने पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ओमियेले सोवर को 3 महीने तक हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया है, लेकिन उन पर मुकदमा अभी चलाया जाएगा। सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए इंटरनेट पर आह्वान देने के बाद सोवर को गिरफ्तार किया गया था। ईरान में अमरीकी दूत का कहना है कि वहां अधिकारियों द्वारा पिछले महीने विरोध प्रदर्शन के दौरान 1,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी दीपक जसरोटिया के हाथ। दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।